نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. آج ہم سورة البقرة آیت نمبر 258 سے 263 تک کریں گے. ہم نے پچھلے ہفتے بہت ہی پیاری آیت پڑھی، یعنی سب سے عظیم آیت اس قرآن کریم کی، بہت خوبصورت آیت اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیت. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آیت سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ نے اس کو بڑے شوق کے ساتھ پڑھا ہوگا اور اس کو آگے بھی پہنچایا ہوگا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا ایک یہ بات کہ اس دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان بڑی بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت، اپنا تعارف بیان فرمایا ہے، اپنی توحید بیان فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد بھی اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو کوئی جبر نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں کہ کوئی ہر کوئی اسلام لے کر آئے، ہر کوئی اللہ کو پہچان کے اس کو مان لے، کوئی جبر نہیں ہے. یہ دونوں راستے بالکل کھلے ہوئے ہیں، گمراہی کا بھی سب کو نظر آ گیا اور ہدایت بھی سب کو نظر آ گئی. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا، طاغوت میں نے بتایا تھا ایسی ہر طاقت جو انسان کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کے اپنی عبادت کی طرف لے کر آئے، یعنی ایسی جو بھی سرکش قوت ہے اللہ کے راستے میں ہٹانے والی ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. وہ انسان کے اپنے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اس کی برادری بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کا جو سماج ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، سوسائٹی جو ہے وہ حکومت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بادشاہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو کوئی اس کا انکار کرے گا ایسی ہر قوت کا کہ میں اس کو نہیں مانتا، میں اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، تو سمجھ لیں اس نے بڑا ایک مضبوط کڑا تھام لیا جس کو جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. یعنی پھر سمجھ لیں کہ اس نے ایک ایسی مضبوط چیز پہ اس کا ہاتھ پڑ گیا ہے کہ اب وہ ڈوبے گا نہیں. سمجھ لیں ایسے ہے کہ کوئی انسان ڈوب رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا مضبوط چیز آ گئی کہ اس نے اس کو پکڑ لیا، اور جب وہ مضبوط سہارا اس نے پکڑ لیا تو پھر اب ڈوبنے کا سوال نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کے نور میں لے آتا ہے، اللہ ان کا دوست ہوتا ہے. یعنی اندھیرے کس کے؟ اندھیرے بہت سارے ہو سکتے ہیں، کفر کا بھی ہو سکتا ہے، شرک کا بھی ہو سکتا ہے، نفاق کا بھی ہو سکتا ہے، گمراہی اور گناہوں کا بھی ہو سکتا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال لیتا ہے. اور جو کافر ہیں ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں، وہ تو ان کو یہ نور کی طرف آنا بھی چاہیں، ہدایت کی طرف آنا بھی چاہیں، ہدایت کی ذرا سی کوئی روشنی ان کو نظر بھی آ جائے نا تو وہ ان کو واپس اندھیروں میں لے جاتے ہیں، اور وہ آگ کے ساتھی ہوں گے ایسے لوگ جنہوں نے طاغوت کو اپنا دوست بنا لیا. تو زندگی میں ضرورت کیا ہے کہ انسان طاغوت کا، ہر طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے. اس میں ایک مثال مجھے یاد آتی ہے سعید بن جبیر کی، کہ حجاج نے جب ان کو پکڑا تھا، یہ تابعی تھے، وہ بہت بڑے عالم دین، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، بہت ہی نیک، بہت ہی بڑے محدث، فقیہ، علم رکھنے والے. اور پتہ ہی حجاج نے بہت ظلم کیا تھا، تو حجاج نے جب، لمبی بات ہے لیکن مختصر اتنا بتا دوں
आज ने जब इनको अपने दरबार में बुलाया था और इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और खुलफाए राशिदीन के बारे में पूछा, फिर उसके बाद पूछा था उसने कि बनू उमैया में से तुम्हें कौन सा खलीफा पसंद है, तो फरमाया जो अपने खालिक को पसंद है। पूछा इनमें से कौन अपने खालिक को पसंद है, उन्होंने कहा इसका इल्म तो उस जात को ही है, मुझे क्या पता, वो ही जानता है। कहता मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय, क्या ख्याल है? तो उन्होंने फरमाया था मेरी राय तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा मैं जरूर सुनना चाहता हूँ। फरमाया कि मेरी मालूमात के मुताबिक तो तुम अल्लाह की किताब के दुश्मन हो और ऐसे काम करते हो जिससे तुम्हारा रोब और दबदबा और धाक बैठ जाए, और ये अंदाज तुम्हें हलाकत की तरफ ले जा रहा है और ये तुम्हें जहन्नुम में धकेल देगा। और हज्जाज ने जब ये बातें सुनी थी, इसने बहुत सारे उलमा को कत्ल किया था, बहुत सारे ताबईन को कत्ल किया था, तो आग भगोला हो गया। कहने लगा अल्लाह की कसम मैं तो तुझे जरूर कत्ल करूंगा। तो फरमाया तू मेरी दुनिया खराब कर देगा तो मैं तेरी आखरत बर्बाद कर दूंगा। हज्जाज ने कहा तुम अपने कत्ल के लिए बताओ कौन सा तरीका पसंद करते हो। तो फरमाया हज्जाज बल्कि तू अपने कत्ल का तरीका चुन ले, अल्लाह की कसम जिस अंदाज से भी तू मुझे कत्ल करेगा वही अंदाज कयामत के दिन तुझे कत्ल करने का इख्तियार किया जाएगा। तो हज्जाज बड़ा जालिम था, तो कहने लगा तू चाहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं। फरमाया अगर ऐसा हुआ भी तो वो माफी अल्लाह की तरफ से होगी, तू मुझे छोड़ के अपने अपने जुर्म से बरी हो जाएगा। तो हजाज गुस्से से आग बगोला हुआ और दरबान से कहा तलवार और चमड़े की चादर लेकर आओ, यानी वो विप जो होता है, कोड़ा जो होता है। ये सुनकर सईद बिन जुबैर मुस्कुराने लगे। हजाज ने पूछा तुम क्यों मुस्कुराते हो? फरमाया तो मैं तेरी जुर्रत के ऊपर मुस्कुरा रहा हूँ और तेरे मुतल्लिक जो अल्लाह का हिल्म है, बुर्दबारी है, वो देख के मुस्कुरा रहा हूँ कि अल्लाह ताला का कितना तहम्मुल है तेरे साथ। हजाज ने कहा जल्लाद इसे कत्ल कर दे। आपने अपना रुख ना किबले की तरफ कर दिया। फरमाया वज्जह इन्नी वज्जह तो वजहिया लिल्लज़ी फतर अस्समावाति वल अर्द हनीफ ममा अना मिनल मुशरिकीन, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना वही इन्होंने भी कहा। तो हजाज ने कहा इसका मुंह भी किबले की तरफ से हटाओ, हटाओ इसका मुंह। तो फरमाते हैं फ़ाइना मा तु वल्लू फ़थम्मा वज्हुल्लाह, जिधर भी तुम रुख कर दो उधर अल्लाह है, मतलब अगर किबले की तरफ से फेर भी देते हो तो जिधर भी रुख करोगे अल्लाह उस तरफ है। हज्जाज ने कहा इसको ऊंधे मुंह लिटा दो, नीचे की तरफ मुंह कर दो। फरमाया मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी से अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान पाक में, इसी से हमने तुम्हें पैदा किया, इसी में तुम्हें लौटाएंगे, इसी से दोबारा तुम्हें निकालेंगे। तो इतना गुस्से में आया कहता अल्लाह के इस दुश्मन को कत्ल कर दो, मैंने जिंदगी में कुरान की आयात इससे ज्यादा याद रखने वाला कोई देखा ही नहीं। तो इन्होंने दुआ की थी कि या इलाही मेरे बाद हज्जाज को किसी पे मुसल्लत ना करना, यानी किसी और के साथ ना ये ऐसा कर सके। तो इनके कत्ल को अभी 15 दिन नहीं गुजरे थे कि हज्जाज को इतना शदीद बुखार हुआ, कभी बेहोश हो जाता कभी होश में आता, जब आंख खुलती थी तो चीख मार के उठता था, कहता था सईद बिन जुबैर ने मेरा गला पकड़ रखा है, वो मेरे से पूछता है बताओ तुमने मुझे क्यों कत्ल किया, फिर बच्चों की तरह रोने लगता, कहता भला सईद बिन जुबैर से मेरा क्या वास्ता, मुझे क्या, दुनिया वालों सईद को मुझसे दूर करो, इससे मुझे बचाओ, मैं मारा गया, मैं तबाह बर्बाद हो गया। इसी तरह करते करते हज्जाज मर गया था। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह वाले जो होते हैं ना, ऐसे जो अल्लाह ताला के साथ दोस्ती लगा लेते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए कैसे हो जाता है कि जैसे उन्होंने एक उरवा तिल वुस्का थाम लिया, एक ऐसा मजबूत कड़ा वो कभी नहीं टूट सकता। यानी कोई उनके साथ कुछ भी कर लेना फिर उनका दिल मुतमईन रहता है, वो डरते नहीं है। जैसे इब्ने तैमिया को जब जेल में डालने लगे थे तो फरमाया था कि मेरी जन्नत तो मेरे दिल में है, वो तो मेरे से कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे मैं जेल में हूं चाहे कहीं पे भी हूं। तो वो फिर जो ताहूत का इनकार करता है ना और अल्लाह पर ईमान लेकर आता है, ये मिसाल है उनकी कि वो उन्होंने इतना मजबूत कड़ा थाम लिया जिसको कभी नहीं टूटना, और अल्लाह ताला सुनने वाला है और वो जानने वाला है किस पे क्या गुजर रही है। और आज जो हम आयात पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें भी यही बात है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसे कलमा हक बुलंद किया था, और ये सबसे बड़ा जिहाद होता है कि जालिम बादशाह के आगे कलमाए हक बयान करना, क्योंकि जालिम बादशाह के आगे बोलना बहुत ही मुश्किल काम है। बड़े बड़े थर थर कांपने लगते हैं, बड़े बड़े लोग बैक ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि उनका रोब होता है, उनके पास पावर होती है, वो कुछ भी इंसान को कत्ल करा दें, कुछ कर दें, जो कि नमरूद ने भी किया था। तो ये नमरूद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान जो मुकालमा हुआ था ना, वो है। और इसमें भी आपको यही पता चलेगा, वक़द इस्तमसका बिल्उरवतिल वुस्का, जो तो उसने थाम लिया फिर मजबूत कड़ा, लन फिसाम अल्लाह, जो ताहूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लेकर आए ना, उसने थामा है वो मजबूत कड़ा। तो कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मजबूत कड़ा थाम लिया और जिसको नहीं टूटना, कैसे अल्लाह ताला ने फिर इनकी ताईद की, कैसे अल्लाह वली हो जाता है ऐसे लोगों का। तो ये इन्हीं आयात की मिसाल आगे दी जा रही है, एग्जाम्पल के साथ बताया जा रहा है। फिर हम दूसरा वाक्य आज पढ़ेंगे, जिंदगी और मौत देने का, कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना, अल्लाह हय और कयूम है आयतल कुर्सी में, तो अल्लाह ताला मुहयी व मुमीत भी है, ठीक है, वो जिंदा करता है और वो मारता है। और कायम रखना किसी को, ये अल्लाह ताला ही का काम है। यानी मैंने आपको बताया था ना अल कयूम में, कि अल्लाह ताला ही है कि अगर किसी को जिंदा रखे, अगर अल्लाह ना जिंदा रखे तो वो कोई चीज सलामत नहीं रह सकती, कायम नहीं रह सकती। तो हम आगे देखेंगे कि जिंदगी और मौत कैसे अल्लाह देता है और कैसे अल्लाह ताला दोबारा उठाता है। दो मिसालें आएंगी, एक पहले उजैर अलैहिस्सलाम की और फिर उससे अगली फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल को हम देखेंगे कि कैसे अल्लाह ताला मुर्दे को जिंदा करता है। और उसके बाद आज के जो आखिरी टॉपिक होगा वो यही होगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना और कब उसका अजर आप ले सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या है, किस शर्त पे आपको अजर मिलता है। हर एक खर्च किया हुआ अल्लाह के रास्ते में वो उसका अजर नहीं मिल जाएगा क्या, तो उसकी एक शर्त है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होनी चाहिए, वो आज हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो देखते हैं आयत नंबर 258 से, अलम तरा, क्या नहीं देखा तुमने, इल्लदी, उस शख्स की तरफ, हाजा इब्राहिम, जिसने उज्जतबाजी की, जिसने मुजादला किया, जिसने झगड़ा किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। अलम तरा का मतलब क्या, क्या तुमने देखा नहीं, देखा का मतलब क्या, क्या हम कैसे देख सकते हैं, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख सकते थे, ये तो उनसे भी हजारों साल पहले की बात थी। तो जब भी अलम तरा आता है ना, तो इन आंखों से देखने का मतलब नहीं होता, दिल की आंख से देखना, यानी जैसे हम किसी को कहते हैं ना, तुमने देखा आज क्या हुआ, तो इसका मतलब नहीं कि आप उस वाक्य को जाके देख रहे थे, यानी तुम्हें पता है ऐसा क्या हुआ आज। इसी तरह ये है कि पता है क्या हुआ था, जब एक शख्स ने झगड़ा किया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और वो शख्स कौन था, वो इराक का बादशाह नमरूद था। आपको पता ही होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेसिकली बिलोंग टू इराक, ठीक है, बेबलोनिया उसको कहते थे। तो वहां पे जिस वक्त वो अपनी कौम में रहते थे, ये उस वक्त का वाक्य है जब अपने बाप के साथ रहा करते थे, उस वक्त जब इनकी इनका बाप कहा जाता है कि ये भी इस नमरूद के दरबार में बहुत बड़ी किसी पोजीशन पे था, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये पता चला कि ये एक खुदा को मानते हैं और इसको नहीं मानते नमरूद को, तो इनको बुलाया गया नमरूद के दरबार में, और वहां उनके साथ ये मुजादला हुआ था, ये जिसको कहेंगे झगड़ा हुआ या जिसको कहेंगे मनाजरा हुआ। ये याद रखिए कि पहले जमानों में जो बादशाह होते थे ना, वो कहते थे कि हम ही खुदा हैं, हम खुदा का अवतार हैं। जैसे कि फिरौन ने भी यही दावा किया था ना, अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा आला रब हूं, यानी वो कहते थे हम खुदा का अवतार है, यानी खुदा हमारी सूरत में जमीन पे आया है, इंसानी शक्ल में हमारे अंदर हलूल कर गया है, हमारे अंदर खुदा ही है जो बोल रहा है, अस्तग़फिरुल्लाह। इसी वजह से सहाबे कहफ जो है वो लड़के भी निकले थे वहां से, अपने मुल्क से, क्योंकि उनके भी आगे यही था कि इसको माना जाए, यानी वो इतनी सरकश कुव्वतें होती थी, वो बादशाहों के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता था उस जमाने में। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज उस जमाने में नहीं है, मगर आज और कुव्वतें हैं जो ताहूत है, कई निजाम है जो ताहूत है, जो कहते हैं बस हमें मानो, कलमा अल्लाह का नहीं पढ़ना, हमारा कलमा पढ़ो, जो हम कहेंगे वो सही और जो हम कहेंगे वो गलत। ठीक है, तो हमारी हमारे पर ईमान जरूरी है। तो उस वक्त नमरूद जो है, ये इराक के बादशाहों का लकब होता था, जैसे फिरौन मिस्र के बादशाहों का लकब था। तो जब नमरूद ने बुलाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और ये जो आज के आप इंशाल्लाह ताला वाकयात पढ़ेंगे ना, तीन तीन स्टोरीज हैं, और ये आपने जरूर शेयर करनी है अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, इसलिए कि बच्चों को स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये बड़ी मजे की भी स्टोरीज हैं और समझ में आने वाली हैं बहुत आसानी से। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, और किस बारे में झगड़ा हुआ, फी रब्बी ही, उसके रब के बारे में, और कोई झगड़ा नहीं था, अल्लाह के बारे में झगड़ा था। आज ऐसे झगड़े होते हैं जी, आज मुसलमानों में भी ऐसे झगड़े होते हैं, क्योंकि मुसलमान घरों में भी रब के बारे में आज बाज जगह पे शकुक व शुभात है, अल्लाह ताला इसे महफूज रखे। लेकिन अकल को पलटते हुए देर नहीं लगती, तो आज ऐसे मुनाजरे घरों में होते हैं, मुसलमानों की मजलिसों में होते हैं, लोग डिनाई करते हैं अल्लाह ताला की जात को, अल्लाह के वजूद को। एथीज्म जितना फैल रहा है ना आज, शायद पहले कभी भी नहीं था, इस कदर ज्यादा एथीज्म हो गया है, और इवन मुसलमान ममालिक में, और यानी खुदा की जात का ही इनकार कर देना। तो जब यहां पे भी क्या हो रहा है कि उसने झगड़ा किस बात पे किया, अल्लाह ताला के बारे में, अन आताहुल्लाहुल मुल्क, के अल्लाह ने अता कर दी इसको बादशाहत, इस वजह से झगड़ रहा था। यानी जब बादशाहत मिल गई ना इस, और वो दी भी किसने, अल्लाह ने, तो उसी के बारे में झगड़ने लगा। और होता है ऐसे ही है, ये इंसान को जब बादशाहत मिल जाए, पावर मिल जाए, पैसा मिल जाए, या ऐसी कोई भी जो अल्लाह ताला बड़ी कोई ऐसी नेमत दे दे उसको, कोई ओहदा मिल जाए, तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसको संभाल सके। अक्सर लोगों के लिए ये चीजें अल्लाह से दूर करने का सबब बन जाती है, इसीलिए तो माल की पास जगह पे आप देखें बड़ी मुजम्मत आई। क्यों? क्योंकि माल अक्सर लोगों को अल्लाह से दूर कर देता है। आप नहीं कोई देखेंगे कि कोई बहुत बड़ी मलिका, या कोई बहुत बड़ी बहुत अल्लाह वाली है, एक मलिका जुबैदा ही थी, लेकिन अदरवाइज आप देखें जो एलीट क्लास होती है किसी भी मुल्क की, एलीट क्लास की जो खवातीन होती हैं, आप कोई देखते हैं उनके अंदर शाज़ो नादर, कभी आप किसी को देखेंगे जो दीन वाली, वरना ज्यादातर क्या आप पे से बाहर ही निकली होती हैं, जो बेगमात होती हैं, वो क्या चीज उनको निकालती है, वो गरूर, वो तकब्बुर की हम बड़ी चीज है। तो जो बादशाह है उसके तो आप क्या ही बात करेंगे, तो बादशाह है तो जाहिर है उसका तो दिमाग कहाँ आसमानों पे, कि मेरे कहने की वजह से कुछ भी हो जाता है। और ये चीजें, ये जो पावर है ना, इसका एक नशा होता है, और ये रास नहीं आती हर एक को, इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए बेहतर होता है कि उनको ये चीजें ना मिले। इंसान ख्वाहिश तो बड़ी करता है कि मुझे पावर मिल जाए, मुझे ओहदे मिल जाए, मुझे मैं बड़ा कोई आदमी ऐसा मालदार बन जाऊं कि मेरे जैसा कोई हो नहीं, लेकिन ये अक्सर इंसान को उसके ईमान से ही हटा देते हैं। इतना तकब्बुर इंसान के अंदर पैदा हो जाता है, इतनी बड़ाई पैदा हो जाती है, एरोगेंस आ जाती है उसके अंदर। तो अन आताहुल्लाहुल मुल्क, अल्लाह का एक शिकवा है ना कि अल्लाह ने उसको बातियात दी थी, इसलिए ही इतना तकब्बुर वाला हो गया। और अल्लाह ताला ने फरमाया ना उसमें सूरह अलक में, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अर्रआहुस्तग्ना, इंसान का मामला यह है कि वो सरकश हो ही जाता है जब वो समझता है कि मैं बेनियाज हूं, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, मेरे जैसा कोई है नहीं। तो जब इंसान ये समझने लगता है ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, देखा मालदार लोगों को क्या होता है, उनको यही होता है ना कि हमें किसकी क्या जरूरत है, सबको हमारी जरूरत है, हमारे पास मांगने आते हैं। जब इंसान इस पोजीशन में आता है तो अक्सर सरकश हो जाता है, हदें क्रॉस करने लगता है, और यही मामला नमरूद का हुआ। अल्लाह ने उसको बादशाह दी थी तो होना क्या चाहिए था, अल्लाह के आगे झुके ना, इसका मतलब जितनी ज्यादा नेमत मिले उतना ही ज्यादा हमें अल्लाह के आगे झुकने वाला होना चाहिए। लेकिन मामला अक्सर उलट होता है, जब नहीं होता तो इंसान बहुत झुकता है अल्लाह के आगे, जितना जितना आने लगता है वो अल्लाह को भूलने लगता है। आप खुद नहीं देखते, हम लोग अपनी मिसाल ही देखें, हमें जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमें इतना रोना आता है, इतना अल्लाह से हम गिड़गिड़ा के दुआएं करते हैं, इतना अल्लाह का जिक्र हमारी जुबानों पे जारी हो जाता है, उठते बैठते अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह इस मुश्किल से निकाल, और इतना खुशू आ जाता है हमारी नमाजों में, नमाज के लिए खड़े होते हैं रोना आ जाता है। लेकिन जिस वक्त हमें आसानियां मिलती हैं, कोई मुश्किल नहीं अब हमारी जिंदगी में, खुशियां ही खुशियां, नेमते ही नेमते, उस वक्त हमारी नमाजों का हाल क्या होता है, उस वक्त भी क्या उठते बैठते अल्लाह अल्लाह ऐसे ही इतना ही हम खुशू से कर रहे होते, नहीं होता ना। तो ये है कि इंसान अपनी हैसियत को याद रखे, जब उसके पास कोई नेमत आए, जितना ज्यादा वो नेमतों में बढ़े उसको शुक्रगुजारी में बढ़ना चाहिए, उसको खुशू में बढ़ना चाहिए। ये दुनिया जो है ना शुक्रगुजार इंसान के लिए कैसी है, ईमान का दस्तरखान है, हर वाक्य से उसको ईमान मिलेगा, हर वाक्य से उसका ईमान बढ़ेगा, ये याद रखे, वो अल्लाह तक पहुंच जाएगा। और जो नाशुक्रा है ना उसके लिए ये दुनिया, जितनी दुनिया मिलेगी वो तकब्बुर उसका और बढ़ता जाएगा, तकब्बुर की गिजा है। इज कॉल इब्राहिम, जब कहा इब्राहिम अलैह सलाम ने उसे, रब्बिया यानी ये जो या ये बता रही है, मेरा रब कौन है, अल्लदी युहयी व युमीत, वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है, मेरा रब वो है। यानी उन्होंने पहली चीज जो बयान की वो थी कि जो किसी और के पास ये सिफत है ही नहीं है, किसी और के पास ये मामला नहीं है कि वो भी जिंदगी दे सकता है और मौत दे सकता है, सिर्फ एक अल्लाह की जात है जो जिंदगी और मौत देने पर कादिर है ना? कोई जिंदगी नहीं दे सकता, कोई किसी को मौत नहीं दे सकता। अब देखें जब इब्राहिम अलैहि सलाम ये अल्लाह ताला का वसफ लेकर आए हैं तो किस वजह से लेकर आए हैं, इसलिए कि और चीजों में कोई कुछ कह सकता है, वैसे तो हर चीज अल्लाह देता है, रिस्क भी अल्लाह ताला देने वाला है, सेहत भी अल्लाह देने वाला है, इज्जतें भी अल्लाह देने वाला है, औलाद भी अल्लाह देने वाला है, लेकिन उस सारी चीजों में से सिर्फ ये क्यों लाए, इसलिए कि कोई कह सकता है ना कि नहीं मैं भी देता हूँ रिस्क, मैं खिलाता हूँ किसी को, मैंने इसको इतने पैसे दिए, मेरी वजह से इसको इज्जत मिली है, लेकिन एक जिंदगी और मौत का मामला कोई भी ये नहीं कह सकता, किसी को जाके कहें, कोई किसी को भी मानता है कि क्या ये जिंदगी और मौत देता है, तो आप देखेंगे वो जब अपनी खुद जिंदगी पे कादिर नहीं है, अपनी खुद मौत पे कादिर नहीं है, तो वो किसी और को क्या जिंदगी और मौत दे सकता है। ये हमने बड़ी तफसील से बात की थी आयतल कुर्सी में, जो खुद मर के और कब्र के अंदर जाके पड़ जाता है वो कैसे किसी को जिंदगी दे सकता है, जो खुद जिंदा नहीं रह सकता वो किसी को क्या जिंदगी देगा, बताए अगर वो जिंदा वो जिंदगी दे सकता होता तो पहले अपने आप को नहीं देता। लेकिन हर एक को मौत है, हर एक को फना है, इससे पता चलता है, हालांकि मरना कोई भी नहीं चाहता, तो जब हर एक को फना है, हर एक के ऊपर मौत आने वाली है या आ गई है, और वो अपने आप को मौत से नहीं बचा सका, तो इसका मतलब है वो मौत पे कादिर नहीं है, इसका मतलब है वो जिंदगी नहीं दे सकता, जो अपने आप को ना दे सके वो किसी को क्या देगा। यहीं से उनका जो गलत बात है, जो उनके गलत दावे हैं वो सामने आ जाते हैं, या ऐसे तमाम लोग झूठे हैं, ऐसे तमाम लोग झूठे हैं जो खुदाई का दावा करें। ठीक, तो अल्लाह है जो जिंदगी देता है, मेरा रब तो वो है जो जिंदगी और मौत देता है, उसने कहा तो ये कौन सा मुश्किल बात है, अना ओही वा उम्मीद, मैं भी जिंदा करता हूं मैं भी मौत देता हूं। उसने जल्दी से बुलाया जो दो कैदी लेकर आओ कैद खाने से, एक को सजाए मौत मिली हुई थी और एक बेचारा कुछ नहीं मिली भी थी उसको सजाए मौत, उसने कहा जिसको नहीं मिली भी थी उसको सजाए मौत दे दो और जिसको सजाए मौत मिली भी थी इसको मतलब छोड़ दो, देखो ना मैंने जिंदगी दे दी और मैंने मौत दे दी। वो समझा ही नहीं कि बात क्या हो रही है, उसने इसी चीज को समझ लिया ये जिंदगी देना और ये मौत देना। उसने कहा यही तो, ये तो इख्तियार मेरे पास भी है, हालांकि किसी को आजाद कर देना उसको जिंदगी देना नहीं होता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखें, अब यहां से पता चलता है दावत कैसे देनी चाहिए, उसी में नहीं उलझ गए कि ये क्या बात हुई, ये तो सही नहीं है, मैं तो ये कह रहा था तुम ये करके फिर, नहीं उन्होंने बात पलट दी, उलझे नहीं उसके साथ। कहला इब्राहिम, कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फ इन अल्लाह याती बिशम्सी मिनल मशरिकी फाती बिहा मिनल मगरिब, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसको मगरिब से ले आओ। आपको पता है नमरूद जो था ना वो कहता था मैं सूरज देवता का अवतार हूँ, मैं सूरज देवता अस्तगफिरुल्लाह सन गॉड जो है वो मेरे अंदर हलूल किया है, वो गॉड है और वो मेरे अंदर हलूल किया। अच्छा चलो ठीक है ना, तुम उसके इसीलिए तो सूरज की बात लेकर आए, सूरज देवता के तुम अवतार हो तो तुम ये करो ना कि ये तो मशरिक से मेरा रब उसको तो मशरिक से निकालता है, तुम उलट करके दिखा दो, मेरे रब के हुक्म से वो निकलता है वहां से। फबूही तल्लदी कफर, तो वो हैरान हो गया जिसने कुफर किया यानी नमरूद ने, हक्का बक्का रह गया। तो जब वो सूरज देवता का इंसानी पैकर होने का दावा करता था, तो अब सूरज को बता दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि सूरज तो मेरे रब का गुलाम है, मेरे रब ने उसको निजाम चलाया हुआ, उसको एक ही सिस्टम का पाबंद कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसे वो निकल ही नहीं सकता सूरज कि अपनी मर्जियां करता रहे, तो तुम उसका अवतार हो तो तुम उसको बिल्कुल वेस्ट से निकाल के दिखा दो। तो अब वो क्या जवाब देता इसका, और अल्लाह ताला का जब तक इजन है सूरज मशरिक से निकलता रहेगा, जब उसका इजन होगा तो यही सूरज मगरिब से निकलेगा। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था ना कि ये सूरज कहाँ जाके डूबता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो डूबता है ये अल्लाह को सजदा करता है और हर दफा ये अल्लाह से इजाजत चाहता है कि मैं निकल आऊं, तो अल्लाह ताला इजाजत देते हैं तो ये निकलता है। अब साइंस वगैरह को इस वक्त छोड़ दें कैसे होता है, वो तो ऐसे घूम रही है वो तो फला हो रहा है, साइंस की बिलीव करके नहीं हम हदीस पे बिलीव करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया ना कि ये सूरज इजाजत लेता है तो वो जैसे भी इजाजत लेता है जैसे भी होता है, हमारा ये ईमान है। जिस दिन अल्लाह ताला उसको इजाजत नहीं देगा और फरमाएगा जहां से आए हो वहीं पलट जाओ, तो वो मगरिब से ही तुलू हो जाएगा और ये कयामत की बहुत बड़ी निशानी होगी, इसके बाद किसी का ईमान लाना उसके कोई काम नहीं आएगा। वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह हिदायत नहीं देता जालिम कौम को, यानी जो जालिम होता है, जालिम कौन यहाँ पे कहा गया, जिसको हिदायत की तलाश नहीं है, हिदायत का कोई शौक नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है, कोई मंजिल पर पहुंचने का उसको उसकी जुस्तजू नहीं है, ऐसा शख्स जालिम है। हालांकि जो ईमान है ना हिदायत है, वो ऐसे ही हमारी जरूरत है जैसे खाना पीना हमारी जरूरत है, लेकिन जो इंसान समझता है कि मुझे नहीं इसकी जरूरत, वो जालिम ही है, हिदायत मेरी जरूरत नहीं है, तो अल्लाह भी उसको फिर हिदायत नहीं देता। अल्लाह किसी को जबरदस्ती तो नहीं हिदायत नवाज देता, हिदायत बड़ी कीमती चीज है। तो इसका मतलब है कि जुल्म से बचना चाहिए, जुल्म की वजह से इंसान हिदायत से दूर हो जाता है। अब दूसरा वाक्या क्या आता है, जो मैंने आपको बताया उजैर अलैहिस्सलाम का वाक्या, और ये वाक्या उस वक्त का वाक्या है जिस वक्त बनी इसराइल को बुख्त नसर एक बादशाह था, उसने आके इस कदर मारा था, इस कदर बनी इसराइल को, ये मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत बाद की बात है, इस कदर ज्यादा बनी इसराइल के ऊपर जुल्म ढाया गया था, इतना ज्यादा उनमें कत्लो गारत किया गया था, बैतुल मकदस की भी ईंट से ईंट बजा दी गई थी, कोई जगह नहीं थी जहां सलामत रही हो, उन्होंने 6 लाख को कत्ल कर दिया, 6 लाख को वो कैदी बना के ले गए अपने साथ, गुलाम बना दिया, और यानी बिल्कुल तबाह हो बर्बाद करके रख दिया उनके शहर को। ठीक है, तो ये उजाड़ दिया, मकानात गिरा दिए, बस्ती वीरान हो गई। तो ये उजैर अलैह सलाम जो थे, ये वहां से गुजरे। अब वो क्या देखते हैं और क्या होता है, ये हम देखते हैं आयत से। औ या, जैसे हम कहते हैं ना, ये या ये चीज, पिछली चीज की वजाहत ये चीज कर रही है कि अल्लाह ताला कैसे जिंदगी देता है। उन्होंने फरमाया था ना, अल्लदी युहयी व युमीत, अल्लाह जिंदा करता है और मौत देता है। तो इसकी एक और मिसाल देख लो, औ कल्लदी, या उस शख्स की तरह, मर्रा अला करियतिन, जो गुजर रहा था, मर्रा या मर्रू यानी गुजरना चलना, अला करियतिन ऊपर एक बस्ती के, और ये जरूसलम की बस्ती थी, वही खाविया अला उरूशिया, और वो गिरी पड़ी थी अपनी छतों पर। बस्ती जो थी वो तो, जो इतना पुर रौनक शहर था ना, वो इस तरह उजड़ा पड़ा था, इतना वीरान था, ऐसे था यानी छतें उल्टी हुई हुई थी, यानी मकान भी कोई बाकी नहीं रहा था, इंसान तो वहां पे दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आता था। काला, उसने कहा, अन्ना योही हादिहिल्लाहु बादा मौतिहा, कैसे अल्लाह जिंदा करेगा इसको इसकी मौत के बाद, कैसे इस बस्ती को जिंदगी मिलेगी। ये नहीं कि उनको कोई शक था, अल्लाह ताला माफ करे, उज़ैर अलैहि सलाम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन यानी एक जहन में बात आती ना इंसान की, कोई चीज को देख के कि ये इतनी बर्बाद हो चुकी है, इतनी खत्म हो चुकी है, कैसे अल्लाह करेगा इसको जिंदा। अच्छा, उनके मुंह से ये बात निकलनी थी कि फा अमातहुल्लाहु मिआता आमिन, अल्लाह ने मार दिया उसको, मौत दे दी उसको 100 साल तक, 100 साल तक अल्लाह ताला ने उनको मौत दिए रखी। अल्लाहु अकबर। सुम्मा बाअथा, फिर उठाया उसको। आप फा और सुम्मा में फर्क देख रहे हैं ना, फा जो है वो जल्दी के लिए होता है, और थुम्मा दोनों का माना हम तो और फिर तो ऐसे कर देते हैं, लेकिन आप वहां पे देखें, जब उन्होंने कहा ना, उसी वक्त फअमातहुल्लाह, उसी वक्त अल्लाह ने उनको मौत दे दी। थुम्मा, अब तराखी है इसके अंदर, डिले है इसके अंदर, 100 साल का डिले है। थुम्मा बाअथा, फिर उठाया उसको, जिंदा किया उसको, और उससे पूछा, काला, उससे कहा, कम लबिस्ता, कितनी देर तुम ठहरे हो, यानी कितनी देर तुम सोए रहे हो, कितनी देर तक तुम मुर्दा रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया, काला लबिस तू, लबिस्ता था फिर लबिस तू है, दोनों में क्या फर्क है, देखें एक जबर और पेश का ही फर्क आया ना, तो क्या माने में क्या फर्क पड़ गया, एक में तुम है एक में मैं है, ये देखें फर्क, ताकि ऊपर जबर आई तो तुम ठहरे, लबिस तू मैं ठहरा, क्या, तो ये नोट करें, यौमन एक दिन, औ बादा यौम या दिन का कुछ हिस्सा, इसलिए कि जिस वक्त उनकी रूह निकली थी उस वक्त सुबह का वक्त था, और 100 साल के बाद जब वो उठे तो शाम का वक्त था, तो उनको यही ख्याल आया कि एक वो ही दिन होगा, जाहिर है सुबह को मैं सोया हुआ तो एक दिन सोया रहा पूरा, या दिन का कुछ हिस्सा कह सकते हैं। काला, फरमाया, बल लबिथ मिअत आमिन, तू तो 100 साल तक तुम ठहरे रहे, यानी तुम पड़े रहे 100 साल तक, 100 साल तक तुम मरे रहे। अल्लाहु अकबर। तो जब वो इस हालत में थे तो उनको इस चीज की बिल्कुल खबर नहीं थी कि वो कितनी देर तक मुर्दा रहे हैं। मौत और नींद एक जैसी चीज होती है, हम भी जब सोते हैं तो हमारी रात को आंख खुले तो हम घड़ी देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि क्या टाइम हुआ, 12 बजे हैं या रात के 3 बज गए, या अगर अर्ली में सोई थी तो अभी 11 ही बजे। बस दफा हम सोते हैं तो हम कहते हैं अच्छा अभी 11 ही बजे, बस दफा पूरी रात सो लेते हैं और आंख खुलती है तो लगता है अभी थोड़ी देर पहले तो सोए थे, और कितना फजर का टाइम होने लगता है, तो हमें भी नहीं पता चलता ना कि हम कितनी देर पड़े रहे। इसी तरह कयामत के दिन जब लोग उठेंगे तो आपस में एक दूसरे से कहेंगे कि हम कितना अरसा रहे, यानी कितना अरसा हम दुनिया में भी रहे और ये जो कब्र थी सारा मिला के कितना अरसा रहे। तो बाज कहेंगे ज्यादा से ज्यादा ना 10 दिन हम रहे थे, यानी कंबाइन दुनिया और कब्र की जो जिंदगी थी वो सब मिला के। और बाज कहेंगे नहीं, कहाँ 10 दिन, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा पूछ लो उनसे जो बहुत ज्यादा यानी ये हिसाब किताब करने वाले हैं, उनसे बेशक पूछ लो एक दिन या कुछ दिन का हिस्सा रहे हैं, और वो भी कहेंगे हाँ इतना ही रहे हैं। सुभान अल्लाह, तो ये पूरी जिंदगी क्या लगेगी हमें, जिसके पीछे हम कितना मरते हैं, कितना लड़ाइयां रखते हैं, कितनी नफरतें रखते हैं, कितने कीने दिल में पाले हैं, कितनी शिकायतें हैं दूसरों से, ये क्या इसकी हैसियत है। दिन का कुछ हिस्सा कुरान में भी आता है, अल्लाह ताला फरमाएंगे उस दिन तो कितना रहे, तो लोग कहेंगे दिन या दिन का कुछ हिस्सा, अल्लाह हम इससे ज्यादा तो हम रहे ही नहीं, कसम से हम इससे ज्यादा रहे ही नहीं। अल्लाह अकबर। तो उजैर अलैह सलाम भी कहते हैं हालांकि अल्लाह के नबी हैं, कि सोचे उनको कैसा फील हो रहा होगा, फीलिंग उनको यही आ रही है कि बस मैं तो थोड़ी देर ही रहा हूं। अल्लाह ताला बता रहे हैं तुम 100 साल सोए पड़े रहे हो, यानी मरे रहे हो। पंजुर देखो, इला तामी का शराबी, अपने खाने पीने की तरफ, जो खाना पीना लेके निकले थे, लम यतसन्ना, खराबी नहीं हुआ, हालांकि आप खाने पीने को आप रख दें थोड़ी देर के लिए ही, फ्रिज से बाहर ही पड़ा रह जाए सालन तो वो सीधा हो जाता है, अगले दिन आप स्मेल आने लगती है, पानी पे काई जमने लगती है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे फ्रेश था जैसे अभी लेके निकले थे। वंदुर इला हिमारी का, और अपने गधे की तरफ देखो, उसका तो पिंजर हुआ पड़ा था, गधे की तो हड्डियां भी जो थी वो गल के और चूरा चूरा हो गई थी। वो चीज जो चंद घंटों में सड़ जाती है, बासी हो जाती है, वो खराबी नहीं हुई, और वो जिसको गलने सड़ने में कई साल लग जाते हैं, वो बस बिल्कुल चूरा हुई पड़ी है। देखिए ना, दो मुतजाद चीजें हैं ना, खाना और पीने, और गधे की हड्डियां चूरा चूरा होने में कितना ज्यादा टाइम का फर्क है, एक एक दिन का बात है और एक सालों साल की बात है, कई 100 साल उसमें लगे शायद, लेकिन वो ऐसे हुआ हुआ। वली नजअला का आयत लिन्नास, और ताकि हम बना दें तुझे एक निशानी लोगों के लिए, तुम खुद लोगों के लिए निशानी बन, यानी तुम लोगों के पास निशानी लेके जाना तो बाद की बात है, तुम योर सेल्फ एक निशानी होगे लोगों के सामने। और वाकई ये निशानी बन गए थे, इसलिए कि इसके बाद जब ये यहां से गए अपने घर, वहां पे तो बस्ती ही अलग हो चुकी हुई थी, कुछ शहर का अलग ही नजारा था, लोग मुख्तलिफ थे, तो जहां पे इनका घर था वहां गए तो देखा कि इनके पोते भी बूढ़े हो चुके हुए थे। अरे 100 साल गुजर गए, पोते भी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन लोगों को ये पता था कि हमारा एक नबी होता था जो कि गुम हो गया था और वो मिला ही नहीं किसी को भी। और देखें सुभान अल्लाह, वहां पे लोग गुजरे होंगे या लोग ने बस्ती बसी या जो भी, कभी कोई इस तरफ को आया ही नहीं या किसी ने भी इनको देखा ही नहीं, वो अल्लाह ताला ने उनकी नजरों से छुपा के रखा। वंजुर, और देखो, इलल एजाम, हड्डियों की तरफ, यानी ये जो गधे की हड्डियां हो गई हैं इनकी तरफ देखो, कई फनुनशीज हुआ, किस तरह हम उठा देते हैं इनको, सुम नक्सुहा लहमा, फिर इसके ऊपर हम गोश्त चढ़ाते हैं। और फिर इन्होंने देखा तो अल्लाह ताला ने इनके सामने इनके गधे की जो हड्डियां थी वो ऐसे ऐसे जुड़ती चली गई, मिलती गई और जुड़ती गई, और उसके ऊपर जैसे पहनाते हैं गोश्त, तो गोश्त पहनाया गया, कोई ऐसा नहीं है जो नजर आ रहा है कि ये सब कुछ कर रहा हो, लेकिन कोई है जिसका अमरे कुन है, कुन हो जा, तो वो सब होता चला जा रहा था। आज हम बड़ी अच्छी तरह इस चीज को समझ इसलिए सकते हैं कि हमारे यहाँ ये जो मूवीज में दिखाते हैं, कार्टून्स में दिखाते हैं, कोई चीज ऐसे कोई बिखर जाता है फिर उसके बाद वो खड़ा होके जुड़ता जाता है और खड़ा हो जाता है और बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है, एक का बिल्कुल भेजा पाश पाश हो गया, वो बिल्कुल मर गया, फिर उसके बाद हम देखते हैं उसके टुकड़े टुकड़े हैं और फिर वो जुड़ गए और फिर खड़े हो गए। हम जिस तरह देखते हैं ना, वो तो इन्होंने एक इफेक्ट्स दिए होते हैं उसके अंदर, लेकिन ये वाकई ऐसा हुआ, अल्लाह ताला ने फरमाया लम्मा तबय्यना लहू, जब वाजे हो गया उसके सामने, काला आलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो उसने कहा कि अल्लाह हर चीज करने पर कादिर है। क्या वाकई ऐसा यकीन हमें है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है? यानी इसके बाद अल्लाह ताला ने उनको जब ये दिखाया है ना, तो एक मुर्दा बस्ती, यानी एक बस्ती बिल्कुल उजड़ चुकी है, एक बस्ती बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कैसे ये जिंदा होगी? ये एक जहन के अंदर आई बात। तो अल्लाह ने उनको खुद मिसाल बना दिया कि तुम खुद देखो, जब तुम्हें मैं मार के और 100 साल के बाद उठा सकता हूं, तो इस तरह मैं इस बस्ती को भी उठा सकता हूं। और इसी के अंदर एक बहुत गहरी बात है, बनी इसराइल यानी मजहबी तौर पे, अखलाकी तौर पे, दीन के लिहाज से बिल्कुल मर चुके थे, दीन का जवाल आ चुका था, इस कदर गुनाहों में पड़ के, इस कदर ज्यादा अंबिया को भी इन्होंने, उनकी भी तकजीब की, और बहुत ही कहाँ तक पहुंच गए थे, और ये अल्लाह की चुनी हुई कौम थी। अब देखें, उनको ख्याल आया कि ये कैसे दोबारा, कभी हो सकता है कि ये ठीक हो, कभी हो सकता है कि दोबारा इनके अंदर इनका रिवाइवल हो। अल्लाह ताला ने दिखाया कि जो मुर्दा है ना, अल्लाह उसको जिंदा कर सकता है, ये मरी हुई कौम भी दोबारा जिंदा हो सकती है, ये मरी हुई उम्मत भी दोबारा जाग सकती है। और फिर उजैर अलैहिस्सलाम ने उनमें काम किया था कि तौरात भी इनसे छिन गई हुई थी, ये बुख्तनसर जो था ना, इसने तौरात का भी खत्म कर दिया हुआ था, इन्होंने अपने हाफजे से फिर तौरात पढ़ी थी और दोबारा बनी इसराइल को तौरात मिली थी, और फिर इन्होंने इनके अंदर काम किया था और दोबारा इनके अंदर जिंदगी की लहर आई, दोबारा ये दीन की तरफ आए। तो किसी कौम की मौत होती है जब वो अपने दीन से दूर हो जाते हैं, जब तो वो कुफर और नाफरमानी और गुनाहों में पड़ जाती है, बिल्कुल जैसे उम्मत मुस्लिमा है आज। इंसान कभी सोचता है ना, कैसे कभी ये उठेगी उम्मत, और मायूसी होने लगती है, और हम सोचते हैं कैसे कभी जिंदा होगी ये तो मर चुके हैं बिल्कुल। ये उसकी मिसाल है कि अल्लाह जिसको चाहे उठा दे, अल्लाह ताला है जो उठाने वाला, तुम क्यों ऐसे सोचते हो कि ये कभी नहीं उठ सकते? और फिर रिवाइवल हुआ था बनी इसराइल का, दोबारा जिंदा हो गए थे, यानी दोबारा जिंदा होने से मतलब समझ रहे, ये नहीं कि मार के वो जिंदा हुए थे, मतलब जैसे आज उम्मत मुस्लिमा मर चुकी है, मर चुकी है, ये इनको जूते मारते जाए, मारते जाए, मारते जाए, जो मर्जी मारे, कोई उठ के कहता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, ये जुल्म है, और मारो इनको, ये इसी काबिल है। आज इनका अखलाक, इनका किरदार, इनकी दीन, इनका मजहब, इनका क्या चीज रह गई है बाकी, अमल में किधर खड़े हुए हैं? तो आज क्या हमें भी नहीं ख्याल आता कैसे जिंदा होगी, कैसे होगी, कैसे अल्लाह इनको जिंदा करेगा? अल्लाह दिखाता है कि वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो मायूस ना होना। इसी तरह इंसानों में भी कई इंसान मर जाते हैं, उनका मर जाना पता ही क्या है, उनके ईमान की मौत। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक माँ, इतना इतना दर्द भरी उसकी कहानी थी कि उसका बेटा जो है, उसने अपना नाम बदल लिया, क्रिश्चियंस वाला नाम रख दिया, मोहम्मद उसका नाम था, स्टार्ट उसका फर्स्ट नेम मोहम्मद था, और उसने बदल के अल्लाह बेहतर जानता क्या रख लिया, और बाइबल भी घर पे ले आया। उस माँ की तड़प देखें और उस माँ का रोना देखें आप कि क्या होगा, और उसका दर्द को आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये क्या, ये मौत है, ये रूहानी मौत है, जिस्म तो चल रहा है, अंदर मौत आ गई है। क्या कभी वो जिंदा हो सकता है? और मैंने यही आयतें पढ़ानी थी, सुभान अल्लाह, तो मैंने कहा वो जिंदा हो सकता है। आप भी सब दुआ करें ऐसे सब बच्चों के लिए जो रूहानी तौर पे मर चुके हैं, जो अल्लाह से दूर हो चुके हैं, अल्लाह उनको जिंदा कर दे, अल्लाह उन सबको जिंदा कर दे, क्योंकि इंसान अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर, वो भी जान गए अल्लाह हर चीज को करने पर कादिर है। किसी का बिगड़ा हुआ बच्चा है, अल्लाह उसको वापस लाने पर कादिर है। कोई बीमारी में मौत के मुंह के पास खड़ा हुआ है, अल्लाह उसको वापस लाने पर कादिर है। कोई आज बे औलाद है, अल्लाह उसको औलाद देने पर कादिर है। कोई आज गमों में परेशानियों में घिरा हुआ है, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात से उसको निकालने पे कादिर है। किसी के आज हालात बहुत खराब हो चुके हैं, अल्लाह उन हालात को बदलने पे कादिर है। जैसे अल्लाह ताला ये मरी हुई बस्ती को दोबारा उठाने पे कादिर है। जब वो उठे तो देखा समा ही बदल गया हुआ। वो बस्ती जिसको उन्होंने कहा था ये तो वीरान पड़ी हुई, ये कैसे जिंदा होगी, वहां पे हसल बसल है, लोग हैं, चल फिर रहे हैं, वो आबादी है, वहां पे तो कुछ और ही समा था। अल्लाह ने दिखा दिया ना, तुम कहते थे अल्लाह कैसे करेगा, अल्लाह देखो कैसे कर देता है। फिर लोगों को पता भी नहीं चलता अल्लाह कैसे कर देता है। फिर तो आज ये दुआ है दिल से हर एक उस बच्चे के लिए जो दीन से दूर हो चुका, जो किसी अंधेरों में गिर चुका है, जो गुनाहों में पड़ चुका है, जो इसमें आगे निकल चुका है, अल्लाह उनको जिंदा कर दे, अल्लाह उनको वापस पलटा दे। क्योंकि इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो वो कह उठे कि मैं जान गया हूं। क्या पहले नहीं जानते थे? जी जानते थे, वो अल्लाह के नबी थे। लेकिन अब जानना कैसा है? आइनुल यकीन। एक होता है इल्मुल यकीन, जैसे हमें इल्मुल यकीन है, ठीक है इल्म है, हम पढ़ते हैं, यकीनी इल्म है। लेकिन एक है आइनुल यकीन कि अपने सामने आंखों से कोई चीज देख लेना, वो जो यकीन है वो तो कहाँ कितने बुलंद पाए का यकीन है। और ये यकीन अल्लाह अपने पैगंबरों को दिया करते थे, क्योंकि उन पैगंबरों ने आगे लोगों को बताना है, और जब वो खुद कन्विक्शन के साथ बताएंगे, जो बात दिल से निकलती है ना वही दिल तक पहुंचती है। तो जब वो पूरे वसूख के साथ बताएंगे तब लोग भी उसी तरह से लेंगे बात को। फिर अगेन इब्राहिम अलैह सलाम का वाक्य आता है। वो पता है ना इब्राहिम अलैह सलाम कितनी बड़ी शख्सियत है, जिनको अल्लाह ताला अपना खलील कह दे, जो अंबिया के बाप हैं, जिनको हर मजहब वाले मानते हैं, यानी यहूद ले लें, ईसाई ले लें, मुसलमान ले लें, इवन हिंदुओं में भी कहते हैं जो ब्राह्मण ये कहा जाता है वो इब्राहिम अलैह सलाम की निस्बत से ही कहा जाता है। इतने जलील कदर पैगंबर अल्लाह ताला ने फरमाया ना, बाज के दर्जात अल्लाह ने बाज पे किए। शुरू में हमने पढ़ा है ना वरफा बादहुम दराजात, बाज को दर्जों में हमने बुलंद कर दिया, जैसे इब्राहिम अलैह सलाम। वाइद काला इब्राहिम, अब ये तीसरा वाक्य सुने। जब इब्राहिम अलैह सलाम ने फरमाया रब्बी ए मेरे रब, अरिनी तू मुझे दिखा दे, कैफा तू हील मौता, किस तरह तू जिंदा करता है मुर्दों को। अल्लाह ताला ने फरमाया काला अवलम तुकमिन, क्या तुम्हें ईमान नहीं है कि मैं जिंदा कर सकता हूँ मुर्दों को। काला बला का क्यों नहीं, बला कि लिया तुम्हारा इन्ना कल्बी, लेकिन इसलिए कि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए, यानी मैं अपने सामने देख लूं, मेरा दिल ठुक जाए उसके ऊपर, जम जाए उसके ऊपर। ऐसे ही है, ऐसे नहीं था कि उनको कोई इसमें शक था। ऐसे ही है जैसे मैं आपको कहूँ आप मुझे दिखाएंगे कैसे आप ये खाना बनाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे यकीन ही नहीं है कि आपने ये खाना बनाया, मतलब मैं देखना चाहती हूँ ना कि आप किस तरह बनाती हैं, उससे लर्न करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इस तरह का वो देखना चाहते थे। उनका क्वेश्चन करना सिर्फ उसको मुशाहिदा करने के लिए था, कि आइनुल यकीन के लिए था, कि मुझे सामने नजर भी आ जाए, वरना ऐसा नहीं कि उनको शक था। इब्राहिम अलैहि सलाम तो वो है जो हर हर इम्तिहान में पूरे उतरे। अल्लाह ताला ने तो खुद इनके बारे में फरमा दिया इब्राहिम ने वफा का हक अदा कर दिया। ये तो वो है जिनको अल्लाह ताला ने इंसानियत का इमाम बनाया, लीडर बनाया इंसानियत का, वो हैं जिनको अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया। तो इनसे ऐसी बात नहीं हम कह सकते कि इब्राहिम अलैहि सलाम नाऊज़ु बिल्ला उनको कोई शक था तो उन्होंने कहा पहले अल्लाह दिखा मुझे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, काला अल्लाह ताला ने फरमाया फखुज बस लो अरबात मिन तयर, चार परिंदे ले लो, फसूर हुन्ना, फिर उनको मानूस कर लो अपने साथ मायल कर लो, इनको अपनी पहचान करा दो। जैसे होता है कि वो पहचानने लगते हैं ना फिर अपने मालिक को, तो वो किस तरह उसकी आवाज को भी पहचानते हैं, फिर उसको साथ बड़े मानूस से हो जाते हैं। फसूर हुन्ना इलेका, फिर मायल करो अपनी तरफ। सुम्मज अला कुल्ली जबल मिनहुन्ना जुज़अन, फिर उनको ज़िबा करके, उनके टुकड़े करके ना, और उनके मुख्तलिफ टुकड़े आपस में मिक्स कर दो, सारे मिक्स कर दिया सारा गोश्त। फिर अला कुल्ली जबल, कुल्ली जबल मतलब कहा जाता है कि चार ही पहाड़, चार पहाड़ों पे जाके उनके टुकड़े रख दो, हर पहाड़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा गोश्त डाल के आ जाओ, सारा मिक्स किया हुआ। तो बाज कहते हैं ये कौन से थे, मोर था, मुर्गा था, एक कौवा था, एक कबूतर था, तो ये चार परिंदे थे और इनका गोश्त मिक्स किया। अब किसी की बोटी कहीं है, किसी की कहीं है, किसी की टांग कहाँ पे है, किसी के सर कहाँ पे है, देखिए ना हर पहाड़ पे बिखरे पड़े हैं उनके टुकड़े। सुम मदउहुन्ना, फिर बुलाओ उनको, यतीना का साया, वो आ जाएंगे तेरे पास दौड़ते हुए। और यही किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, कि चार परिंदे लिए, उनके टुकड़े किए और पहाड़ों पे रख दिए, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनको जब बुलाने लगे तो जिस जानवर को आवाज देते थे उसके बिखरे हुए जो पर इधर से उधर उड़ते आते, आपस में जुड़ते और हिस्से सारे जुड़ते, खून खून के साथ मिलता, बाकी जितने भी अज्जा थे जिस जिस पहाड़ पे होते आपस में मिलते जाते, और वो परिंदा जुड़ के उड़ता हुआ आपके पास आ जाता, आप उसे दूसरे सार अपने पास रखा हुआ था, चाहे सार जो था ना वो इनके पास था, ये एक रिवायत में ही आता है। तो आप जो जैसे परिंदा आता उसका नहीं सार, किसी और का सार उसको देते तो वो कबूल नहीं करता था, को उसका सार देते थे तो उसके साथ जुड़ जाता था। यहां तक कि एक एक करके ये चारों परिंदे जिंदा होके उड़ के आए, और इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने ये आ गया कि अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा, अल्लाह ने दिखा दिया आंखों से। और ये मैंने आपको बताया था ना कि इस सूरत में पांच वाकयात हैं मौत से जिंदगी देने के, तो ये चौथा वाकया था उजैर अलैहिस्सलाम का, और पांचवा वाकया ये कि अल्लाह ताला कैसे मुर्दे को जिंदा करेगा। वालम अन्नल्लाह अजीज उन हकीम, जान लो ये बात, खूब अच्छी तरह इल्म हासिल कर लो इसका, इल्म लो इसका किसका, कि बेशक अल्लाह ताला गालिब है और हिकमत वाला है, गलबा अल्लाह का है, इसलिए अथॉरिटी है उसकी, उसके पास पावर है, वो कादिर है कुछ भी करने पर, और वो हिकमत वाला भी है। यानी यहाँ इसी तरह अल्लाह ताला जमा करेगा मुर्दों को कयामत के दिन, इसी तरह जिंदा कर देगा। आप इसके अंदर एक बहुत बारीक पॉइंट है उसको नोट कीजिए, बहुत खूबसूरत बात है, और वो ये बात है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने साथ मानूस किया हुआ है, हमारी रूहें भी अल्लाह को पहचानती हैं। जैसे अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया ना, पहले पहचान कराओ उनको, अपने साथ अटैच कर लो, फिर जब तुम आवाज दोगे ना ये उड़ते हुए आएंगे। अल्लाह ताला ने हमें अपने साथ मानूस कराया हुआ है, ये जो रूह है ये अल्लाह को पहचानती है, और ये जो जिस्म है ना ये अल्लाह ताला का फरमा बरदार है। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि दिल चल, तू वो कहता है नहीं अल्लाह का हुक्म है बंद हो जा, तो वो बंद हो जाता है। हम जितना मर्जी इसको कहते रहे कि तू चल, मैं तुझे कह रहा हूं चल, तू मेरा दिल है, वो मानता है, कोई मानता है क्या हमारी, नहीं मानता ना, इसे नहीं पता चलता कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरी नहीं सुनता, ये अल्लाह की सुनता है। हम एक बीमारी है, एक कैंसर है, हम कहते हैं तू कैंसर क्या है, सेल्स ही हैं जो बेहंगम बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इंसान के अपने सेल्स हैं, इंसान कहता है कि बंद करो या खत्म करो ये सिलसिला, ये नहीं होना, तुमने नहीं बढ़ना, कितना मर्जी कहते रहो, उन्होंने तो मानना नहीं है, वो तो अल्लाह की मान रहे हैं। ये जिस्म भी हमारा अल्लाह से मानूस है और उसकी मानता है, ये रूह भी हमारी अल्लाह से मानूस है और उसकी मानती है। जिस दिन अल्लाह इनको पुकारेगा ना, एक आवाज दी जाएगी, फिर देखना कैसे दौड़े भी जाती हैं हशर के मैदान में और जमा हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, वो कैसे भागते हैं फिर, बिल्कुल इन परिंदों की तरह, जिनके टुकड़े कहाँ कहाँ थे और मिल गए ना, इसी तरह हमारा जरा जरा पता नहीं किधर किधर होगा, और जो हजारों सालों से मरे हुए हैं उनकी तो हड्डियों के भी चूरे होके पता नहीं पाउडर बन के वो पाउडर भी उड़ गए, हजारों सालों से जो मिट्टी में मिल चुके हैं उनके गोश्त तो कब का खत्म हो गया, हड्डियां तक भी बाकी नहीं है आज, वो जर्रा जर्रा कहाँ जाएगा, कोई कोई समुंदर में पड़ा हुआ है, कोई हवाओं में उड़ के कहीं चला गया, कोई जमीन में कहीं मिल गया, कोई किसी के पैरों के साथ लग के कहीं और चला गया, उनकी तो कब्रें भी खत्म हो चुकी हैं, कब्रों के भी निशान मिट चुकी हैं, वो जर्रा जर्रा जो होगा ना, वो इसी तरह जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुलाया तो अल्लाह के इज़्ज़त से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बुलाने से नहीं, अल्लाह के इज़्ज़त से वो हार टुकड़ा, हार गोश्त का टुकड़ा उसका आता गया मिलता गया, इसी तरह मेरा और आपका जर्रा जर्रा आपस में मिलेगा, वो जहां कहीं भी होगा, वो समुद्रों की गहराइयों में कोई जर्रा पड़ा हुआ है, वो कहीं जंगलों में कोई पड़ा हुआ है, वो किसी की दीवार की उसमें लगा हुआ जाके, वो जमीन में रुल चुका है, कहीं जमीन में दफन हो चुका है, वो वहां से हर जर्रा मिलेगा, और मैं और आप खड़े होके उस एक आवाज की तरफ भागते चले जाएंगे, अपना खुद कंट्रोल नहीं होगा, भागते चले जाएंगे, क्योंकि ना ये जिस्म अपना ना ये रूह अपनी सुनेगी, ये भागेंगे अल्लाह के हुक्म की तरफ, ये तो थोड़ी देर के लिए अल्लाह ने हमें ये जो तो इख्तियार दिया था ना, इसको हमने सारा कुछ ही समझ लिया कि बस इसके तो मैं ही मालिक हूं, मैं ही जो करूं, क्योंकि मैं अपना हाथ उठाना चाहती हूँ उठ जाता है, मैं रखना चाहती हूँ रखा जाता है, तो मैंने समझ लिया कि मैं ही बा इख्तियार, हालांकि ये भी अल्लाह ने इनको हुक्म दिया कि ए हाथ उस वक्त उठना जब ये चाहे, ए जुबान उस वक्त बोलना जब ये बोलना चाहे, जिस दिन अल्लाह ने ये इख्तियार ले लिया वापस, देखना यही जुबान हमारे खिलाफ बोलने शुरू हो जाएगी, हमारी सारी बातें बताएगी, ये स्किन हमारे खिलाफ ही बोलेगी, हमारी सब शिकायतें लगाएगी, ये आंख कान ये सब चीजें हमारी खिलाफ बोलेंगी, क्योंकि ये अल्लाह के गुलाम है और ये अभी भी उसकी गुलामी कर रहे हैं, क्योंकि उसने हुक्म दिया कि इसकी मान, जिस दिन वो ये हुक्म वापस ले लेगा तो वो वापस अल्लाह के फरमाबरदार, इतनी छोटी सी टेस्ट को, इतनी छोटी सी बात को हमारी अक्ल ने नहीं समझा आज तक, और हम खुद खुदा बन बैठे, आज जिसको इकतदार मिलता देखे क्या वो फिरौन और नमरूद नहीं बन जाता, उसको सब हकीर कीड़े नहीं नजर आने लगते, उसको खुद ना भी दावा करे कोई भी नहीं दावा करता, ना भी कोई कहे आज के दौर में कि मैं खुदा हूं, लेकिन वो काम वही करता है जैसे कि वो खुदा ही है, वो खुदा बन जाता है, अपने आप को यही समझने लगता है, क्या आज ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं समझते, हम ये नहीं इसको यकीन रखते कि ये सारा कुछ मुझे अल्लाह ने अमानत के तौर पे दिया, मैं थोड़ी देर के लिए इसकी मुझे मालिक बनाया, ये सब इख्तियार अल्लाह ने वापस ले लेना, ये सब उसके गुलाम है, मेरा कुछ नहीं है, खुद देखो फिर कैसे ये जिस्म दौड़ेगा अल्लाह की तरफ, क्योंकि ये उससे मानूस है, असल बात ये है कि इंसान इस दुनिया में जब अल्लाह ने इख्तियार दिया तब अपने आप को अल्लाह से मानूस कर दे, तब अपने आप को अल्लाह की तरफ मायल करे, तब इंसान अल्लाह ताला का हो जाए, तब मजा आएगा उस दिन जब दौड़ेंगे भी उसकी तरफ, वरना दौड़ तो लगनी ही है अल्लाह की तरफ, जाना ही पड़ेगा उस दिन उसकी तरफ, लेकिन फिर हालत क्या होगी, इंसान का दिल क्या होगा और उसके जिस्म की हालत क्या होगी, वो जान रहा होगा कि मैंने दुनिया में क्या किया, तो आज इसको मानूस करो अल्लाह ताला से, आज इसको अल्लाह की तरफ लेकर जाओ, क्योंकि इसके अंदर तड़प है एक रब को पाने की, वो पहचानता है उसको, हमने उसको इधर उधर भूल भुलैयों में लगा दिया,